ये हफ्तावार बाइबल का दरसी वाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 21 नवंबर 2021 बरोज़ इतवार हफ्ता के अख्ताम पर आपके मुताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मजमून, जान और जिस्म, सुनहरी मतन, जबूर। नेकोकार के साथ नेक होगा। जवाबी मतालिया, जबूर। खुदावंद ने सच्चाई के साथ दाऊद से कसम खाई है और उससे फिरने का नहीं कि मैं तेरी औलाद में से किसी को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा, क्योंकि खुदावंद ने से उनको चुना है, उसने उसे अपने मस्कन के लिए पसंद किया है। वहीं मैं दाऊद के लिए एक सींग निकालूंगा, मैंने अपने ममसूह के लिए एक चिराग तैयार किया है। मैं उसके दुश्मनों को शर्मिंदगी का लिबास पहनाऊंगा, लेकिन उस पर उसी का ताज रौनक अफरोज होगा। उसने अपने बंदे दाऊद को भी चुना और भेड़ सालों में से उसे ले लिया। वो उसे बच्चे वाली भेड़ों की छुपानी से हटा लाया, ताकि उसकी कौम याकूब और उसकी मेरास इसराइल की गलाबानी करे। सो उसने खुलूस दिल से उनकी पासबानी की। दरसीवाज बाइबल में से जबूर। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मुकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है। सैमुएल। और खुदावंद ने सैमुएल से कहा, तू कब तक दाऊद के लिए गम खाता रहेगा, जिस हाल के मैंने उसे इसराइल का बादशाह होने से रद्द कर दिया है? तू अपने सींग में तेल भर और जा, मैं तुझे बैतलहमी यस्सी के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक अपनी तरफ से बादशाह चुना है। और सैमुएल ने वही जो खुदावंद ने कहा था किया, और वो बैतलहम में आया और उसने यस्सी को और उसके बेटों को पाक किया और उनको कुर्बानी की दावत दी। पर खुदावंद ने सैमुएल से कहा कि तू उसके चेहरे और उसके कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है, क्योंकि खुदावंद इंसान की मानद नज़र नहीं करता कि इंसान ज़ाहरी सूरत को देखता है, पर खुदावंद दिल पर नज़र करता है। फिर सैमुएल ने यस्सी से पूछा, क्या तेरे लड़के यही हैं? उसने कहा, सबसे छोटा अभी रह गया। सो वो उसे बुलवाकर अंदर लाया। वो सुर्ख रंग और खूबसूरत और हसीन था, और खुदावंद ने फरमाया, उठ और उसे मसा कर, क्योंकि वो यही है। तब सैमुएल ने तेल का सींग लिया और उसे उसके भाइयों के दरमियान मसा किया, और खुदावंद की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर ज़ोर से नाजल होती रही, और खुदावंद की रूह साउल से जुदा हो गई, और खुदावंद की तरफ से एक बुरी रूह उसे सताने लगी। सो जब वो बुरी रूह खुदा की तरफ से साउल पर चढ़ती थी, तो दाऊद बरबत लेकर हाथ से बजाता था और वो बुरी रूह उस पर से उतर जाती थी। सैमुएल। और दाऊद ने देखा कि साउल उसकी जान लेने को निकला है। उस वक्त दाऊद दश्ते ज़ैफ के बन में था, और साउल का बेटा यूनतन उठकर दाऊद के पास बन में गया, और खुदा ने उसका हाथ मजबूत किया। उसने उससे कहा, तू मत डर, क्योंकि तू मेरे बाप साउल के हाथ में नहीं पड़ेगा, और तू इसराइल का बादशाह होगा, और मैं तुझसे दूसरे दर्जे पर होऊंगा, ये मेरे बाप साउल को भी मालूम है। सैमुएल। गो इंसान तेरा पीछा करने और तेरी जान लेने को उठे, तो भी मेरे मालिक की जान जिंदगी के बुकचा में खुदावंद तेरे खुदा के साथ बंधी रहेगी। सैमुएल। जब साउल फिलिस्तियों का पीछा करके लौटा, वो रास्ते में भेड़ सालों के पास पहुंचा, जहां एक गार था, और दाऊद उस गार में फरागत करने घुसा, और दाऊद अपने लोगों समेत उस गार के अंदरूनी खानों में बैठा था। और दाऊद के लोगों ने उससे कहा, देख, ये वो दिन है जिसकी बाबत खुदावंद ने तुझसे कहा था, کہ دیکھ میں تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا اور جو تیرا جی چاہے تو اس سے کرنا۔ سو داؤد اٹھ کر ساؤل کے جبہ کا دامن چپکے سے کاٹ لے گیا۔ اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ داؤد کا دل بے چین ہوا، اس لیے کہ اس نے ساؤل کے جبہ کا دامن کاٹ لیا تھا۔ اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ خداوند نہ کرے کہ میں اپنے مالک سے، جو خداوند کا ممسوح ہے، ایسا کام کروں کہ اپنا ہاتھ اس پر چلاؤں، اس لیے کہ وہ خداوند کا ممسوح ہے۔ اور اس کے بعد داؤد بھی اٹھا اور اس غار میں سے نکلا اور ساؤل کے پیچھے پکار کر کہنے لگا کہ اے میرے مالک بادشاہ۔ جب ساؤل نے پیچھے پھر کر دیکھا تو داؤد نے اوندھے منہ گر کر سجدہ کیا۔ دیکھ، آج کے دن تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خداوند نے غار میں آج تجھے میرے ہاتھ میں کر دیا، اور بازوں نے مجھ سے کہا بھی کہ تجھے مار ڈالوں، پر میری آنکھوں نے تیرا لحاظ کیا اور میں نے کہا کہ میں اپنے مالک پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا کیونکہ وہ خداوند کا ممسوح ہے۔ ماں سوائے اس کے، اے میرے باپ، دیکھ، یہ بھی دیکھ کہ تیرے جبہ کا دامن کاٹا اور تجھے مار نہیں ڈالا، سو تو جان لے اور دیکھ لے کہ میرے ہاتھ میں کسی طرح کی بدی یا برائی نہیں اور میں نے تیرا گناہ نہیں کیا، گو تو میری جان لینے کے در پہ ہے۔ خداوند میرے اور تیرے درمیان انصاف کرے اور خداوند تجھ سے میرا انتقام لے، پر میرا ہاتھ تجھ پر نہیں اٹھے گا۔ اور ایسا ہوا کہ جب داؤد یہ باتیں ساؤل سے کہہ چکا تو ساؤل نے کہا، اے میرے بیٹے داؤد، کیا یہ تیری آواز ہے؟ اور ساؤل چلا کر رونے لگا۔ اور اس نے داؤد سے کہا، تو مجھ سے زیادہ صادق ہے، اس لیے کہ تو نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے حالانکہ میں نے تیرے ساتھ برائی کی، اور تو نے آج کے دن ظاہر کر دیا کہ تو نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، کیونکہ جب خداوند نے مجھے تیرے ہاتھ میں کر دیا تو نے مجھے قتل نہ کیا۔ اور اب دیکھ، میں خوب جانتا ہوں کہ تو یقیناً بادشاہ ہوگا اور اسرائیل کی سلطنت تیرے ہاتھ میں پڑ کر قائم ہوگی۔ سیموئل۔ جب خداوند نے داؤد کو اس کے سب دشمنوں اور ساؤل کے ہاتھ سے رہائی دی تو اس نے خداوند کے حضور اس مضمون کا گیت گایا، خدا میری چٹان ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھوں گا، وہی میری سپر اور میری چٹان ہے، میرا اونچا برج اور میری پناہ ہے، میرے نجات دینے والے، تو ہی مجھے ظلم سے بچاتا ہے۔ اپنی مصیبت میں میں نے خداوند کو پکارا، میں اپنے خدا کے حضور چلایا، اس نے اپنی ہیکل میں سے میری آواز سنی اور میری فریاد اس کے کان میں پہنچی۔ خداوند نے میری راستی کے موافق مجھے جزا دی اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق مجھے بدلا دیا۔ اسی لیے خداوند نے مجھے میری راستی کے موافق بلکہ اپنی اس پاکیزگی کے مطابق جو اس کی نظر کے سامنے تھی بدلا دیا۔ نیکوکار کے ساتھ نیک ہوگا۔ متی۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ خدا جو انسان اور ساری مخلوق کی جان ہے، اپنی انفرادیت، ہم آہنگی اور لافانیت میں دائمی ہوتے ہوئے منفرد رہتا اور انسان میں ان خوبیوں کو عقل کے وسیلہ نہ کہ مادے کے وسیلہ متواتر رکھتا ہے۔ الہی عقل سبھی شناختوں کو بطور منفرد اور ابدی، گھاس کاٹنے والی تلوار تا ستارے تک محفوظ رکھتا ہے۔ سوالات یہ ہیں، خدا کی شناختیں کیا ہیں؟ جان کیا ہے؟ کیا زندگی یا جان بنائی گئی چیز میں موجود ہوتی ہے؟ روح یا سب کا الہی اصول روح کی بناوٹیں نہیں ہیں۔ جان روح، خدا، خالق، حکمران محدود شکل سے باہر لامحدود اصول کا مترادف لفظ ہے جو صرف عکس کی تشکیل کرتا ہے۔ سائنس جان روح کو بدن میں غیر موجود ظاہر کرتی ہے اور خدا کو انسان میں نہیں بلکہ انسان کے وسیلہ منقص ظاہر کرتی ہے۔ عظیم ترین کم ترین نہیں ہو سکتا، یہ عقیدہ کہ عظیم ترین کم ترین میں ہو سکتا ہے ایک غلطی ہے جو ناکام ہو جاتی ہے۔ جان کی سائنس میں یہ ایک نمایاں نقطہ ہے کہ اصول اس کے خیال میں نہیں ہوتا۔ روح، جان انسان میں محدود نہیں ہے اور مادے میں کبھی نہیں ہوتی۔ فانیت کے اندر आपके पास रूह या लहफानियत का क्या सबूत है? हत्ता कि फितरी साइंस के मुताबिक भी बदन को छोड़ते और इसमें दाखिल होते हुए इंसान ने कभी रूह या जान को नहीं पकड़ा। फ़ानी अकीदे के दावे के अलावा रूह के अंदर बसने के नज़रिए की क्या बुनियाद है? इस हवाले से क्या इजहार ख्याल होगा कि एक घर आबाद था जिसमें चंद लोग रहते थे, जबकि उनमें से किसी को भी ना अंदर आते देखा गया, ना बाहर जाते देखा गया और ना ही कोई खिड़की पर कभी नज़र आया। बदन के अंदर रूह को कौन देख सकता है? रूह खुदा और जान है, इसीलिए जान मादे में नहीं होती। अगर रूह मादे में होती तो खुदा का कोई नुमाइंदा कार ना होता और मादा खुदा की छवि की मानद होता। ये नज़रिया कि रूह जान जहानत मादे में बसती है स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ये गैर साइंसी नज़रिया है। कायनात इलाही मवाद या अक़ल की अकासी करती या जाहिर करती है, इसलिए खुदा सिर्फ रूहानी कायनात और रूहानी इंसान में ही दिखाई देता है। जैसा कि सूरज रोशनी की उसी किरण में दिखाई देता है जो इससे खारिज होती है, खुदा सिर्फ उसी में जाहिर होता है जो ज़िंदगी सच्चाई और मोहब्बत की अकासी करता है। हाँ, जो खुदा की खसूसियात और कुदरत को जाहिर करता है, जैसे कि इंसानी सूरत आईने में दिखाई देती है। आईने के सामने खड़े शख्स के रंग शक्ल और हरकत को दोहराती है। शनाख्त रूह का अक्स है, वो अक्स जो इलाही असूल यानी मोहब्बत की मुतअद्दद सूरतों में पाया जाता है। जान मादा जिंदगी इंसान की जहानत है जिसकी इनफरादियत होती है लेकिन मादे में नहीं। जान रूह से कम तक किसी चीज़ की अकासी कभी नहीं कर सकती। इंसान रूह का इजहार। भारतीयों ने बुनियादी हकीकत की चंद झलकियाँ पकड़ी हैं जब उन्होंने एक खूबसूरत झील को अजीम रूह की मुस्कुराहट का नाम दिया। इंसान से जुदा जो जान को जाहिर करता है, रूह गैर देवताई होगी। इंसान जो रूह से दरियाफ्त शुदा है, अपनी उलूहियत खो देगा। इंसान खुदा की अकासी करते हुए अपनी इनफरादियत नहीं खो सकता, मगर बतौर मादी एहसास या बदन में एक जान के तौर पर अंधे बशर रूहानी इनफरादियत की बेनाई ज़रूर खो देंगे। अक़ल में मादे पर अपने फ़ानी अकीदे को तर्क कर दें और सिर्फ एक अक़ल यानी खुदा को अपनाएं, क्योंकि ये अक़ल अपनी खुद की शबी बनाती है। उस समझ के वसीला जिसका सामना साइंस करती है, इंसान का अपनी शनाख्त खो देना नामुमकिन है। और ऐसे इम्कान का तसव्वुर ये नतीजा अक्स करने से भी ज़्यादा मज़हिका खेज है कि इनफरादी मौसीकी की आवाज़ें इब्तदा की हम आहंगी में खो जाती हैं। बदन या मादे से फहम को अलग कर दें जो इंसानी अकीदे की महज एक शक्ल है, तो आप खुदा या अच्छाई का मफहूम और अजली और लाफानी की फितरत जान सकेंगे। फहम और वक्त के तगैयरात से आज़ाद होते हुए आप ज़िंदगी की मजबूत चीज़ों और सिरों को और ना अपनी शनाख्त को खोएंगे। हस्ती का ये साइंसी फहम रूह के लिए मादे को तर्क करते हुए किसी वसीला के बगैर अलूहियत में इंसान के सूखेपन और उसकी शनाख्त की गुमशुदगी की तजवीज़ देता है, लेकिन इंसान पर एक वसी तर इनफरादियत निछावर करता है, यानी अमाल और ख्यालात का एक बड़ा दायरा वसी मोहब्बत और एक बुलंद और मजीद मुस्तकिल अमन अदा करता है। मोहब्बत की सेहत बख्श तादीब के वसीला हम रास्तबाजी अमन और पाकिजगी की जानब पेशकदमी करते हैं। एक छोटे बच्चे की मानद बनने की ख्वाहिश और नई सोच के लिए पुरानी को तर्क करना उस दानिश को जन्म देता है जो जदीद नज़रिए को कबूल करने वाली हो। गलत निशानियों को छोड़ने की खुशी और उन्हें गायब होते देखने की शादमानी, ये तरगीब मुकम्मल हमाहंगी को तेज़ी से अमल में लाने में मदद देती है। समझ और ख़ुद की पाकिजगी तरक्की का सबूत है। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। सवाल, जान की साइंस की शराइत क्या हैं? जवाब, इस साइंस का पहला मुतालबा ये है कि तू मेरे हजूर गैर मबूदों को ना मानना। ये लफ्ज़ मेरे रूह है, लिहाजा इस हुक्म का मतलब ये है, तू मेरे सामने कोई जहानत ना ज़िंदगी ना मवाद ना सच्चाई ना मोहब्बत रखना माँ सिवाय उसके जो रूहानी है। दूसरा भी इसी तरह है, तू अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। इस बात की पूरी तरह से समझ आ जानी चाहिए कि तमाम इंसानों की अकल एक है, एक खुदा और बाप, एक जिंदगी, हक और मोहब्बत है। जब ये हकीकत एक तनासुब में आया होगी तो इंसान कामिल हो जाएगा, जंग ख़त्म हो जाएगी और इंसान का हकीकी भाईचारा कायम हो जाएगा। दूसरे देवता ना होना, दूसरी की तरफ जाने की बजाय रहनुमाई के लिए एक कामिल अकल के पास जाते हुए इंसान खुदा की मानद पाक और अब्दी हो जाता है, जिसके पास वही अकल है जो मसीह में भी थी। अब मैं मेरी बेकर रेडी की जानब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोजाना के 3 फ्राइज पढ़ूंगा। रोजमर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फर्ज है कि हर रोज ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, जिंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुना मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महजाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीह साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरियाँ साइशों की अकासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशन गोइयों, मुनसफियों, मजम्मतों, इसलाहों, गलत तासरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वह हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के ख़िलाफ़ ख़ुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बायस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।